अब दोबारा आयत नंबर 16 से लुकमान ही की बात अपने बेटे के लिए। यहाँ से तरतीब भी समझ में आती है कि अगर हम अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़ चुके हैं फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें पेश की जाएंगी। पीछे बात कर दी कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बन जाओ और उसके साथ अपना अच्छा मामला रखो। अब अगला दर्जा होता है तकवा का, बच्चों को गॉड कॉन्शियस बनाना। अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। ये वो एहसास है कि जिसके लिए अब फरमाया जा रहा है, या बुनैया इन्नहा इन तकुम इसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन। लुकमान ने कहा, प्यारे बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी हो, बहुत छोटी मुराद है, फतकुन फी सखरतिन, और फिर वो हो भी किसी चट्टान में, या फिर औफिस समावाति औफिल अर्द, या आसमानों या ज़मीन में हो, यानी बाहर पड़ी है, ऊपर है, नीचे है, मुराद कह के कहीं भी हो। होगा क्या क़यामत के दिन, यती बिहल्लाहु, ले आएगा उसको भी अल्लाह। खास से मुराद क्या है, वही चीज़ जो हब्बे के बराबर थी, हब्बा, इसीलिए आप देखेंगे मुअन्नस आया है, यानी छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, क़यामत के दिन उसको अल्लाह ताला ले आएगा। क्योंकि इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला बारीक बीन और हर चीज़ से बाखबर है। अंदाज़ बड़ा खूबसूरत है, अगर आप गौर फरमाएं तो इस एक आयत के अंदर बच्चों को वो कुछ सिखा दिया गया जो हो सकता है कि सारी ज़िंदगी उनको किसी भी इस्लामी स्कूल में भेजने के बावजूद भी नसीब ना हो, और वो क्या है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आज हमारे यहाँ जूँ ही बच्चों की दीनी तालीम की फ़िक्र होती है तो सबसे पहले फ़िक्र पड़ जाती है कि इसको 6 कलमे आ जाएँ, फिर इसको ईमान मुफस्सल आ जाए, मुजमल आ जाए, फिर इसको नौरानी कायदा पढ़ना आ जाए, और उसके बाद 4-6 साल लगा कर पूरा कुरान पढ़ ले ताकि हमारा मुर्दा बख्शा जाए। और जिस दिन बच्चा सादा नासरा कुरान पढ़ लेता है, माँ बाप इस खुशी में भी मिठाई बांटते हैं कि चलो अब दोबारा जाना तो नहीं पड़ेगा ले लेके इसको मस्जिदों में और स्कूलों में, और एक पुराना सा जोड़ा भी दे देते हैं मौलवी साहब को, क्या बाइंदा आप ज़रा हमसे कम ही सलाम दुआ रखिएगा। और बस माँ बाप इसके बाद मुतमईन हो जाते हैं। मैंने देखा है कि इतना शौक़ होता है बच्चों को पढ़ाने का, यानी ये अच्छी बात है, यहाँ तक हमारे कल्चर की ये बात बहुत अच्छी है कि नाजरा पढ़ाने का बहुत फिक्र है कि कम से कम एक बार पढ़ लें। और बस लोगों का यहाँ तक सुना गया कि उनका ख्याल जाए कि अगर ऐसा ना किया तो मुर्दा नहीं बख्शा जाएगा हमारा, लेकिन इसके बाद फिर बाकी बातें पीछे बढ़ जाती हैं। हालांकि हकीकत यह है कि ये सब चीज़ें तो ऐसे ही है कि किसी को कोई चीज़ ऑपरेट करनी आ गई, कोई मशीन ऑपरेट कर ली आपने, लेकिन अगर उसके अंदर की बारीकियाँ और उसकी हकीकत नहीं मालूम तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद इंसान उससे सही तरह फ़ायदा नहीं उठा सकता। जब भी किसी को अपने बच्चे की तरबियत करनी है तो अल्लाह ताला की पहचान के बाद उसको अब ये एहसास दिलाना है कि वो ज़ात इतनी बड़ी है, तो फिर याद रखो कि उसका मुहासबा भी बहुत बड़ा है। ये है वो कैफियत जिस पे कुरान में सबसे ज़्यादा बात की जाती है, इत्तकु रब्बकुम, लोगों डरो अपने रब से। और तकवा होता है कॉन्शियसनेस, बाशऊर होने का नाम है। ऐसा इंसान हर लम्हे इस ख्याल के साथ जीता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। यहाँ वो बात भी याद आ रही है कि जो किसी एक मामू की तरफ नस्बत की जाती है कि जब बच्चा उनके पास रहता था तो तहज्जुद पढ़ने के शौक़ ने बच्चे को भी जब थोड़ा समाइल किया तो उन्होंने कहा कि रात को सोते हुए और सुबह उठते हुए 10-10 बार कह दो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। बच्चों की तहज्जुद यही होती है, और फिर यही हुआ, इसी शऊर के साथ बच्चा बड़ा हुआ और बाद में एक इंतहाई नेक इंसान बना। लोगों ने पूछा कि आपकी नेकी की वजह क्या है, तो कहने लगे कि मामू का सिखाया हुआ वो एक जुमला कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये कहते कहते आदत हो गई तो शऊर में लग गई ये बात, जब कभी कुछ करने लगता था ऐसे लगता था कि अल्लाह ताला की निगाहें दिख रही हैं। लिहाजा उसके बाद फिर गुनाहों की तरफ रगबत नहीं गई। जब हम बच्चों को ये जुमला कहते हैं ना कि अब्बू देख लेंगे, अम्मी देख लेंगी, अमूमा देखिए कि खौफ दिलाया जाता है, माँ बाप से डराती रहती है, बाप बेचारा माँ से डराता रहता है, और बच्चा किसी से भी नहीं डरता। और अगर डरता भी है ना तो वो फिर जब माँ बाप नहीं होते तो उस वक़्त बच्चा जो है वो बिल्कुल अपने आप को आज़ाद महसूस करता है। या हम डराते हैं तो दुनिया से डराते हैं, लोग क्या कहेंगे, कमरा साफ़ कर लो आंटी क्या कहेंगी, घर गंदा है मेहमान क्या कहेंगे, नहा लो मेहमान क्या करेंगे, कपड़े क्या पहने हैं, लोग क्या कहेंगे, यानी ऐसे लगता है कि हम बच्चों की सारी सेंस ख़त्म कर देते हैं इस एहसास की कि अल्लाह देख रहा है। तो लिहाजा या बुनैया, ए छोटे बेटे, इन नहा, बेशक अगर, इन तकु, अगर इन तकु का किसके तरफ जा रहा है, आगे बताया नहीं क्या, बस अगर हो कुछ, क्या खती अतन, यहाँ छुपा हुआ लफ्ज़, कि अगर कोई खता, कोई गुना, कोई नाफरमानी, कोई मिस्टेक, कोई अल्लाह की नाफरमानी वाला लफ्ज़, कोई भी चीज़ अगर छुपी हुई हो, इसी तरह इन तकू का लफ्ज़ जो है ये खसलत के लिए भी आ सकता है। मुराद है कि अच्छी या बुरी आदत, मुराद ये कि तुम्हारी कोई भी बात, कोई भी काम जब तुम छुपा के करोगे या जाहिर करोगे, अल्लाह ताला उसको बाहर ले आएगा। हब्बतिन का लफ्ज़ बोल के, मिसकाल हब्बतिन, ये जो लफ्ज़ मिसकाल है ना, सिकल से है, सा काफलाम बोझ को कहते हैं, कि अल्लाह ताला इसको बाहर निकाल के रख देगा, मिन खरदलिन, राई का, खरदल कहते हैं राई को, खाते भी हैं कुछ लोग, इस्तेमाल भी करते हैं, सरसों के शायद बीज को कहते हैं राई, बहुत बारीक होता है, अगर सिर्फ इस कमरे में कहीं गिर जाए तो यकीनन हम में से कोई भी ढूंढ नहीं सकता या उठा नहीं सकता। कहा अगर सिर्फ एक राई का दाना ज़मीन व आसमान में या पहाड़ की बुलंदियों में या पहाड़ों की तहों में कहीं गिर जाए, याति बिहि अल्लाह, अल्लाह इसको ले आएगा, तो क्या फिर वो इंसान के आमाल, उसकी नीयतों, उसकी बातों को नहीं जानता होगा। अल्लाह ताला ने इतनी छोटी सी चीज़ की मिसाल दे के इंसान के शऊर को बुलंद किया। अल्लाह के नबी सल्लम ने भी बिल्कुल यही अंदाज़ इख्तियार किया। मुसनद अहमद की एक रिवायत है कि अगर तुम में से कोई शख्स, ज़रा गौर से सुनने की बात है ये वैसे, क्योंकि कहते हुए भी दिल पर इसका असर होता है, फरमाया अगर तुम में से कोई शख्स बेसुराख के पत्थर में जाकर भी कोई अमल करेगा, यानी किसी ऐसी जगह जाके कोई अमल करें, कोई सुराख नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, अल्लाह ताला इसे भी लोगों पर जाहिर फरमा देगा, चाहे वो कैसा ही अमल हो। अल्लाह हू अकबर। आप कह सकते हैं किसी को कुछ काम करके कि अब किसी और को ना बताइएगा, अब किसी को पता ना चले, इतना यकीन रखे कि जैसे शीशे में कोई चीज़ पड़ी सबको दिखती है, अल्लाह को दिखती है, क्योंकि अल्लाह कौन है, लतीफ़ुन खबीर, इतना बारीक बीन है कि उसको बारीक से बारीक चीज़ों का बेलम है, और ख़बीर इतना है कि रात के वक्त चलती हुई चींटी जो काले पहाड़ पे चलती है उसको भी वो खूब अच्छी तरह से जानता है। तो लिहाजा ये शऊर ज़िंदगी में तब्दीली लाता है। अब देखिए कि अल्लाह ताला की जब अजमत और बड़ाई बताई जाएगी तो फिर ये एहसास भी तो बढ़ेगा ना, और जो लोग इस शऊर के साथ जीते हैं, कभी भी उनकी माएँ अपनी बच्चियों को ये नसीहत नहीं करती कि जब शौहर घर होगा तो सास की खूब खिदमत करना, आगे पीछे फिरना। मैं महसूस करती हूँ कि हमारे कल्चर में ये अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टेड है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आप आजमा के देखें, हमारे रवैये बदल जाते हैं, माँ बाप के सामने उसके बच्चे के साथ क्या रवैया है, माँ बाप की गैर मौजूदगी में क्या, शौहर के सामने बच्चों के साथ क्या करते हैं और शौहर के बाद मेहमानों के सामने बच्चों के साथ क्या मामला है और इस तरह से उनके बाद क्या करते हैं। जिसको ये यकीन हो जाएगा ना कि मेरा हर अमल निकलना है, फिर वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। सूरह ज़लज़ाल में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़मैया मल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की अल्लाह उसको भी दिखाएगा। और इसी तरह से हज़रत आयशा फरमाती हैं, ये आयत उतरी तुम तो खुश हो गए, हाँ ये छोटी छोटी नेकी दिखेगी लेकिन हमारी सारी खुशी ख़त्म होगी जब अगली आयत सुन ली कि वमैया मल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि छोटे से छोटा ज़र्रा बराबर अगर कोई शर भी इंसान की ज़िंदगी में होगा तो उसको भी अल्लाह ताला खोल के रख देगा। सूरह ज़लज़ाल ही में आता है कि यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़्यामत के दिन ज़मीन इंसान की खबरें देगी, क्यों, बिअन्ना रब्बक औहा लहा, क्योंकि उसके रब ने उसको इसकी वही की। क्या मुश्किल है, आज दुनिया में इसकी कितनी मिसालें हैं। आज आप देखिए, सेटेलाइट ने तो ये सारी मुश्किल ही आसान कर दी, आप घरों के अंदर तक झांक सकते हैं, यहाँ बैठे हैं आप, दें जिप कोड, आपको उनके घर की गली तक छोड़ के आएगा आपका कंप्यूटर, एक एक चीज़ पता चल जाती है कि लोग कहाँ हैं क्या हैं। एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, ऐसी ऐसी मशीनों में से आपको गुजारते हैं, अंदर आपकी हड्डियों तक को वो देख लेते हैं, एक्सरेज को देख लीजिए, क्या ये दुनिया वाले देख सकते हैं तो अल्लाह नहीं देख सकता। ट्रैफिक के रूल्स में देखिए कितने एक्शंस नोट होते हैं, आप एक टिकट ख़रीद लेते हैं महीने की इकट्ठी, हर दफ़ा वो अपने स्क्रीन पे बस में ट्रेन में लगाते हैं, उनको कैसे पता चल जाता है आपका ये मनोस्कोट कहाँ का है? जब उनको पता चलता है, हमें नहीं पता चलता, हमारे हाथ में वो कागज़ होता है हर वक्त, लेकिन हमें अगर दो तीन के सब मिक्स हो जाए अपना ढूंढ भी नहीं हम सकते, लेकिन उनको कैसे पता चलता है? मशीनों में होता है। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अब देखिए कि हर बंदे को अपनी प्राइवेसी बहुत अजीज़ होती है। बस अमल ऐसे होते कि इंसान इवन शौहर बीवी या बीवी शौहर के लिए भी पसंद नहीं करते कि वो हमारी ये प्राइवेट कंडीशन देखें, या हमें इस कैफियत में हमारा ये मैटर उन पे खुल जाए, या ये राज की बात किसी को मिल जाए। बेस्ट फ्रेंड्स भी होंगे तो बाज़ अमर फिर भी एक दूसरे से छुपाए जाते हैं, लेकिन आप सोचिए क्यामत के दिन सब कुछ होगा। आज दुनिया में हम कितना कुछ छुपते हैं, बस जब हम पेलटॉक पे क्लासेस कर रहे होते हैं एकदम कोई रूम में आता है और अला भला लिख के चला जाता है, चले गए। उनकी आईडी हम नहीं पहचानते पीछे कौन है, हम ढूंढ भी सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत क्या है? लेकिन क्यामत के दिन तो पता चलेगा ना। आज माँ बाप से छुप के चैटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बात हो रही है, मैसेजिंग हो रही है, नहीं पता, अल्लाह को पता है। हम क्लास में बैठ के क्या लिख रहे हैं क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता, साथ बैठे को नहीं पता चलता, आप नोट्स ले रहे हैं या आप चैटिंग कर रहे हैं बैठ के एक दूसरे से, लेकिन अल्लाह को पता है। इस एहसास के साथ अगर ज़िंदगी बसर की जाए वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आप इस पर एक छोटी सी एक्टिविटी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, खूबसूरत राइटिंग से अपनी लैंग्वेज में जहाँ जो भी आप समझते हैं छोटे स्टिकर्स बना लें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। हालांकि मार्केट में बनी हुई बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ऐसी, लेकिन जब आप अपने हाथ से बनाएंगे तो इंशाल्लाह एहसास होगा। और घर के ख़ास ख़ास जगहों पर लगा दें, कमरे की मैचिंग का बना लें, प्रिंट आउट्स बना लें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं जिन चीज़ों पर रिकमेंड करती हूँ अमूमन, जो मुझे लगता है ख़ुद, एक तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा लें ऐसे ही खूबसूरत से तरीके से लगा दें, फिर आप एक अपने टेलीफोन पे लगा लें, किचन में लगा लें, टीवी स्क्रीन पे लगा लें, घर से निकलने का जो डोर है ना, जहाँ निकल रहे हैं तो आपकी नज़र पड़ जाए उस पर, जो शीशे में आप देख रहे होते हैं कि लिबास ठीक है उस पर लगा लें, यकीन करें कि बहुत फ़र्क पड़ता है। एकदम बंदा अपनी नज़रें बचाने लगता है कि वाकई अल्लाह के साथ मैंने इस तरह का मामला किया है तो क्या अल्लाह ताला को ये बात जो है मेरी अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। तो अल्लाह की ज़ात ना सिर्फ ये कि चीज़ों को ज़ाहिर करेगी, बल्कि अल्लाह की ज़ात बंदे के इरादों उसकी नीयतों को ज़ाहिर करेगी। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमें नहीं पता हमारे इरादे के, हमें नहीं पता कि इसके बाद अगला काम हमने क्या करना है, हमने इस क्लास से उठने के बाद कहाँ जाना है, लेकिन अल्लाह की ज़ात को आज से 50,000 साल से पहले से भी पता था कि हम आज इस वक्त ये करेंगे। तो शऊर के साथ ज़िंदगी बसर करें, तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह ताला। अब इसके बाद अगला काम है जिसकी माँ बाप को फिक्र होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बीच वाली चीज़ को मिस करके जब डायरेक्ट इस चीज़ की बात करते हैं तो असर ज़्यादा नहीं होता। और वो क्या है? या बुनैया, ए प्यारे बेटे, अब देखिए बार बार मोहब्बत का अंदाज़ है, ये बार बार की मोहब्बत की पुकार जो है ना, ये बच्चे का एतमाद बहाल करती है माँ बाप पे। उसको पता चल जाता है कि मेरी माँ मेरी सिंसियर है, शी इज़ माई वेल विशर, ही इज़ लविंग मी, बाप मेरा मुखलिस है। अगर किसी को ये एहसास दिला दें कि ना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ दुश्मन नहीं हूँ, तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। क्या करो? अकीम सलाह, नमाज कायम करो। लफ्ज़ क्या आया है देखिएगा, अकीम वाहिद का लफ्ज़ है कुरान पाक में, अक्सर ये लफ्ज़ अकीम उस्सलात में आता है, जमा के लफ्ज़ में। क्यों? इससे पता चलता है कि नमाज का हुक्म वन ऑन वन बेस पे देने की ज़रूरत होती है, फ़र्दन फ़र्दन। हर बच्चा एक ही साथ एक उम्र में नहीं आएगा ना। अल्लाह के नबी सल्लम ने जो हुक्म दिया कि 7 साल का हो तो बच्चे को नमाज का हुक्म दो, और 9 साल 10 साल होने दो, और 10वें साल पे फिर ना करे तो थोड़ी सख्ती करो। तो अब जाहिर है कि अगर आपके 2 बच्चे भी हैं तो कम से कम तो दोनों में 10-11 महीने का फ़र्क है ही ना, तो हर एक को दो वक्त पे बात करो। ये नहीं कि एक ही लाठी से सबको हाँक दो और एक ही बात करते जाओ करते जाओ। कहा कि व अकीम सलाह, नमाज कायम करो, मुनासिब वक्त पे बात की जाए, फ़र्क होता है। फिर इसी तरह हर बच्चे का मिजाज भी फ़र्क होता है, कोई प्यार से मान जाएगा, कोई गुस्से से मानेगा, कोई सख्ती से मानेगा, हर बंदे को उसकी नेचर के मुताबिक उसकी आदात के मुताबिक ट्रीट करो। और साथ ही साथ क्या करो? वामुर बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म दिया करो, वनहा अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते रहो। ये किसको कहा जा रहा है? बच्चे को कहा जा रहा है, गौर कीजिएगा। हमारे यहाँ तसव्वुर है कि बच्चों को ये कहा जाए कि तुम अच्छी बात का हुक्मदार बुरी से रोको। हमारे यहाँ तो बड़े होने तक हमें ये काम नहीं पता होता, दूसरों को क्या पता होगा, लेकिन असल में यहाँ बच्चे को लीडरशिप सिखाई जा रही है। ये है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, कि कैसे बनो कि ना खुद बुराई करो ना बुराई होता देखो। साथ ही साथ आजी भी कर दी कि वन्हा अनिल मुनकर, मुनकर से रोको, और वसबिर अला मा असाबक, जो तकलीफ पहुंचे उस पर फिर सब्र भी किया करो। आजी सिखा दी कि जो भी अमर बिल मारूफ करेगा उसके लिए मुश्किलात तो आएंगी, उसको तो वाकई आजमाया जाएगा। तो कहा साथ ही फिर सब्र करो, इन नज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। यहाँ आप देखिए कि एक अजीब खूबसूरत अंदाज है औलाद की इसलाह का, और वो कह के पहले उनकी अपनी नमाजें ठीक कराई। अल्लाह का शऊर आया तो नमाज की तरफ लगा दिया, जब नमाज पढ़ने लग गए तो साथ ही बता दिया कि नमाज का असर बुराई से रोकना है। पीछे हम पढ़ चुके इन नसला तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज मुनकर से रोकती है। साथ ही साथ बता दिया कि नमाज एक ऐसी चीज़ है, अगर वो ठीक हो जाए तो बंदे के अंदर से बाकी सारे काम भी दुरुस्त हो जाते हैं। किसी की बात मैंने उन्हें कहा कि आपको वेस्ट में किस चीज़ ने बचाया, आपके तो चारों तरफ बुराई है, चारों तरफ गंदगी है, आप कैसे पाक रहे? उन्होंने कहा नमाज, मेरी नमाज ने, बचपन से जो आदत माने नमाज की डाली और साथ मस्जिद में जाकर पढ़ने की डाली तो उसने मुझे बुराइयों से रोका। आप देखिए कोई नमाज पढ़ता हो 5 वक्त, और ख़ास तौर पे वक्त पे जमात के साथ पढ़ता हो शऊर के साथ, क्या वो मुनकर में रह सकता है? मिसाल है गंदी से गंदी बात, कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर में, डेटिंग हो रही है, दोनों मिलने जाते हैं, लड़की उसको चले, खुद ही लड़की नहीं पहल कर ली, आ गई एक ऐसी लड़की जिसका खुदा फरामोश दीन है, आ गई, थोड़ी देर अभी बात हो रही होगी, इतनी देर वो घड़ी देखना शुरू कर देगा, क्या मतलब, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वो कहेगा नहीं, हैव टू गो बिकॉज इट्स टाइम टू जोहर, मैंने नमाज पढ़ने जाना है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, नहीं मुझे तो जाना है। अच्छा भी ठीक है, अब वो उसकी बेचैनी देख के लड़की का मूड चेंज होगा, वो कंफर्टेबल फील करेगी, ये कहते हो कि आई विल कम बैक, बैठता बैठ के इंतज़ार करती है, वो जाता है 15 मिनट जाने आने के लगे, आधे पौने घंटे में वापस आ गया, अभी थोड़ी सी उससे प्यार मोहब्बत की बात शुरू की फिर घड़ी देखनी शुरू कर दी, भाई क्या मसला है, टाइम टू गो इस असर टाइम, आप मुझे बताइए कि क्या बुराई आगे बढ़ सकती है? मेरे लिए वो खुद ही पाँव पटक के भाग जाएगी कि मुझे तुम जैसे के साथ नहीं रहना। ये नमाज का असर होता है, हम जब नमाज को उसके वक्त पे उसकी रूह के साथ पढ़ते हैं ना, तो उसके नतीजे में हमारी नमाजें जो हैं वो जिंदा होती हैं, और वो नमाजें हमें हकीकत में फिर बुराइयों से रोकती हैं। हमारी नमाजें जब जिंदा होंगी ना, उसके बगैर हम कभी भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम कर ही नहीं सकते। ये इतना बड़ा काम है, आप कह लें कि आपकी गाड़ी में आप एक तो गैस डालते हैं, पेट्रोल जिसको आप कहते हैं, और दूसरा आप उसमें कोई ऑयल वगैरह डालते हैं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता ना तो गाड़ी नहीं चलती। इस तरह अल्लाह के रास्ते में ख़ास तौर पे अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की जो बात है ना, ये काम ना किया जा सकता अपने लिए, खुद को बुराई से नहीं रोका जा सकता, अपने आप को फ़ायदा नहीं दिया जा सकता, और ना दूसरों की इसलाह की जा सकती है, जब तक नमाज के जरिए अल्लाह ताला से गहरा ताल्लुक ना हो। अगर हमें ये चीज़ मुश्किल लगती है तो जाके चेक करें नमाज में कमी होगी। एक दफ़ा एक शख्स था तो उसका साइकिल नहीं चल रहा था, उसने सोचा कि मेरे साइकिल के टायर में ख़राबी हो गई है, कोशिश की उसको देखने की, समझ नहीं आई, उसको किसी भी दुकान पे ले गया। इसका ख्याल था कि दुकानदार जो है ये साइकिल का टायर बदलेगा, लेकिन उसने टायर को हाथ भी नहीं लगाया, उसने देखा साइकिल नहीं चल रही, पीछे जो देखा, इतने में उसने डंडा कुछ लेके, तो वो जो चेन चल रही होती है साइकिल के पहिए के अंदर एक्सल के साथ, उसने उस चेन को ठोकना शुरू कर दिया। ये कहेंगे भाई क्या कर रहे हो, खराबी टायर में, तुम इसकी चेन तो ठीक ठाक है। उसने कहा तुम चुप करो, तुम्हें साइकिल चाहिए ना, चलाया तो टायर चलने लगा, कहने लगा कि असल खराबी टायर में नहीं थी, असल खराबी चेन में थी। बिल्कुल जिंदगी का ये मामला जहन में रखिए, जहां आपको मसला दिख रहा है ना, मसला वहां नहीं होता, उससे थोड़ा सा हट के पीछे होता है। हमारे दीन की कमजोरी में बहुत बड़े मसले जरा पीछे होते हैं, सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता ना तो हम दूसरों के प्रेशर में आ जाते हैं, अंदर एनर्जी नहीं होती तो हम थक जाते हैं, और बज़ाहर हमारे सामने रीजंस दुनिया के अंदर रहने वालों की होती हैं, इसकी होती हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ बच्चे को बताने के नाते से तो और अच्छी बात बता दी कि जो बच्चा बचपन में इतना कॉन्शियस होगा वो बड़े होके कैसे काम नहीं करेगा। हकुकुल्ला के बाद अब इंसानों की, लोगों की खैरख्वाही का जज्बा उभारा जा रहा है, क्योंकि बेहिस और मुर्दा दिल लोग तबलीग का काम नहीं कर सकते। फिर आप देखिए कि आपका अपना घर कितना साफ हो, अगर बाहर गंदगी फैली हो तो आपका घर भी साफ नहीं रहेगा। ज़ाती ज़िंदगी की इस्लाह के लिए है अकीम सला, और इज्तमाई ज़िंदगी की इस्लाह के लिए है वामुर बिल मारूफ। आप तन्हा ये काम कर ही नहीं सकते, कोई इंसान अकेला जी नहीं सकता। हाँ, ये मुश्किल बड़ा है तो बस फिर सब्र करो, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है। भेड़ों के छज्जे में हाथ डालना है, लोग एक खास डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं, उनको हर चीज़ दुनिया की दिख रही होती है, आपने उनका पूरा फेस टर्न कराना है। यानी जैसे इस वक्त मैं आपको देख रही हूँ ना, और आप मुझे देख रहे हैं, आपको सामने बोर्ड दिख रहा होगा, आपको सामने की दीवार की चीज़ें दिख रही होंगी, मुझे सामने से बैक की चीज़ें दिख रही हैं। अब एक ऐसी कैफियत अगर रखी जाए कि हम फौरन फेसेस टर्न करें, क्या 1 सेकंड में हो जाएगा? कुछ उथल पुथल होगी? मेरा ख्याल है 15-20 मिनट, क्या आधा घंटा हमारा लग जाएगा, अगर मेरा टेबल आप उधर ले जाएं और आप अपने डेस्क और चेयर्स इधर करें। ये जो उथल पुथल है ना, इस पे वस्बिर अलैहा है। ज़िंदगी में जब लोग एक ख़ास माहौल में चल रहे होते हैं ना, तो उसके बाद उनको फिर चेंज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बुरी चीज़ जो हम इंसानों को लगती है वो चेंज लगती है, तब्दीली। हम दीन भी लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी लें, हमारी बीवियाँ भी लें, हमारे मर्द भी लें, लेकिन जूं ही वो दीन हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने लगता है, और ख़ास तौर पे जब हमारे सोशल सेटअप को चेंज करें, हमारे ख़ानदान बिरादरी के ताल्लुकात को चेंज करें, हमारी मईशत और माशरत को चेंज करें, तो लोग एकदम गर्म होने लगते हैं कि बस अब इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहा वसबिर अला मा असाबक, जो तुम्हें इस पर पहुँचो उस पर सब्र करो। मा असाबक में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि एक तो लोगों का रिएक्शन, लोगों की बातें, लोग कैसी बातें करते हैं, और दूसरी बात क्या है कि मुखालफत अगर होती है ना तो रिएक्शनरी ना बनो, खुद को संभालो। इस्तकामत के मानों में यहाँ सब्र। आप देखिए कि अपने ही नफ्स की इसलाह कोई आसान काम नहीं है, यही इतना मोटा हुआ पड़ता है, इसको पकड़ के अगर इंसान ले जाए सुबह शाम, अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा रहा है, नफ्स की सरकशी और गफलत पर उसे हर वक्त डांटे, बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है, हौसले की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग इससे और दूर हैं उन तक बात करना, उनको नेकी का शौक़ दिलाना, उनकी सरकशी के आगे बंद बांधना, ये आम लोगों का काम नहीं है। ताने भी पड़ेंगे, तीर भी पड़ेंगे, घायल भी होना पड़ेगा, जिस्मानी रूहानी अजियतें भी होंगी, टॉर्चर भी होंगे, और बाज़ दफ़ा तो जान तक ले लेते हैं लोग, लेकिन ऐसे मौके पे वस्बिर अला मा असाबक, सब्र और इस्तकामत, ये दो चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं कि जो इंसान को सिराते मुस्तकीम से उतरने नहीं देती, सबीलुल जन्ना पे कायम ही ये दो चीज़ें रखती हैं, सब्र और इस्तकामत। वो एक शेर भी है ना कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, कि मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। एक दफ़ा बंदा चल पड़े फिर उसके बाद रास्ते आसान हो जाते हैं, लेकिन इन नज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। हम थोड़ी सी बात करेंगे अज़्म पे, सूरह तौहा में भी किया, मुझे आप ही साथियों में से किसी ने कहा कि मेरे अंदर काम करती तो हूँ शुरू, लेकिन उसके कुछ देर के बाद बस ऐसे लगता है फिर छोड़ देती हूँ। तो मैंने कहा आप में अज़्म की कमी है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के फल चख लेने के अमल पर भी जो कमेंट दिया सूरह ताहा में, वो यही दिया कि हमने उनके अंदर अज़्म नहीं पाया। तो देखेंगे कि अज़्म क्या होता है, तो कुछ डिक्शनरी के मानी आपके सामने रखूंगी। अल अज़्म वल अज़ीमतु अक़्दुल क़ल्बी, किसी काम को करने का पुख्ता इरादा कर लेना, वो अहकामात जिनका हुक्म मिले, जिनको अंजाम देने के लिए इंसान को हिम्मत और मर्दानगी का मुजाहरा करना चाहिए, उस पे जम जाने को अज़्म कहते हैं। इसी तरह वो काम जिनको करने का अल्लाह ताला ने कतई हुक्म दिया है उसको इंसान करे, यानी इसमें कतईयत आती है, हतमी, डेफिनेटली, कुछ भी हो कूद पड़ना है, बेखतर कूद पड़े आतिश नमरूद मेश, यानी जो भी हो आई डोंट केयर, हालात कुछ भी हो मैं चल पड़ी, मैंने करना है, यानी जिसको आप कह सकते हैं ना स्टबननेस। जब बंदा एक चीज़ पे जम जाता है ना, तो उसके बाद वो कहता है अब मुझे किसी की परवाह नहीं। कभी आप देखा करें लड़कियों को, जब वो किसी एक लड़के की मोहब्बत में घर वालों के आगे बोल के बाज दफा घर से कदम भी निकालती हैं, उनको पता होता है कि इसका इंजाम बाप को हार्ट अटैक की सूरत में भी हो सकता है, माँ के आंसुओं की सूरत में भी इसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो कहती है कुछ भी अब मैंने सोचा मैंने कर लेना है। ये है अज़्म। नेकी के कामों पे जमना अज़्म वालों ही का काम है। बहुत सारे लोग इंतज़ार करते रहते हैं, हमने बहुत कुछ करना है, इरादे भी बहुत हैं, लेकिन अभी हालात साजगार नहीं है, अभी कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। बस जब हालात ठीक हो जाएंगे, जब फिज़ा साजगार होगी, जब मेरे साथ काम करने वाले तैयार हो जाएंगे, फिर मैं करूँगी। और उसके बाद फिर मलकुल मौत से मुलाकात हो जाती है। कितने लोग हैं जो नेकियों के इरादे किए हुए, तमन्नाएं दिल में छुपाए हुए इस दुनिया से चले गए, लेकिन कर ना पाए। क्यों? इनिशिएटिव नहीं थे। ये जो असमिल उमूर है ना, इसमें बीइंग इनिशिएटिव भी हो रहा है। पहल करें आप, बिस्मिल्लाह करें, बारिश का पहला कतरा बने। हालात साजगार नहीं है, आप काम करना शुरू कर दें, आप उठें, आप देखेंगे कि लोग खुद ही चलते जाएंगे। एक साथी थी तो उन्होंने एक मौके पे इरादा किया कि मैं अपने घर के करीब के जो लोग हैं उनको तालीम दूंगी। उनको कहा गया कि ऐसा करें कि आप दौरे कुरान वाली ऑडियो जो है उससे काम शुरू करें, क्योंकि तफसीर जो होती है इसमें ज़रा लोगों को ज़रा फोकस होना पड़ता है, तो शुरू में लोग तैयार नहीं होते। उसने प्लान किया, कहती मैंने अपने पूरे मोहल्ले में पैगाम दिया कि आज मेरे घर में क्लास शुरू हो रही है, आपने आना है। फिर कहती मैंने पूरे तरीके से सजा के अपनी क्लास को संवारा, रखा रखाया करके कुरान लेके मैं बैठ गई। कहती जो वक्त दिया था एक भी नहीं आया, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, कोई भी नहीं आया। फिर कहती कि मैंने अल्लाह को कहा कि अल्लाह मैंने तो तेरी बात पहुंचानी थी ना, और मैंने ये सुना है कि जहाँ इंसान नहीं होते वहाँ फरिश्ते होते हैं, मैं शुरू कर देती हूँ। कहती मैंने अकेले ही पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने शुरू से शुरू किया। कहती जूँ ही मैंने पढ़ाया, कुछ तो लोगों को लगता है कि आने की भी आदत होती है ज़रा देर से, कहती एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और फिर उसके बाद कहती है कि लोगों ने आके पहले ने जिसने मुझे देखा होगा अकेली पढ़ा रही है, उसको तो हो सकता है कोई हैरत ही हुई हो, लेकिन एक एक कर करके कहती उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्लास जमती गई। शुरू में 8 आएंगे, 10 आएंगे, फिर 11 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 8, 10, 12 तो छोड़ दे, एक ही बहुत है। इन नज़ालिका मिन असमिल उमूर, हिम्मत बड़ी करनी पड़ती है। जब भी लोगों को आप बुलाएंगे नेकियों की तरफ, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं ना जब हालात साजगार होंगे फिर काम करेंगे, इस जुमले को उलट कर लें। हालात साजगार कब होते हैं? जब अल्लाह हमारे अंदर अज़्म देखता है। देखिए मैं मिसाल देती हूँ कि आप किसी को आता देखे रास्ते में, आप आगे रुकावट रखें, वो रुक जाएगा, आप तो खुश हुए ना। लेकिन किसी गाड़ी को बहुत तेज़ी से पीछे से कोई आता देखे तो लोग तो खुद गाड़ी यहाँ आगे से हटा लेते हैं कि ये हमें ही ना टक्कर मार दे। ये कोशिश है। हालात साजगार कब होंगे? जब हम भागेंगे, हम चलेंगे, और हम लोगों से पूछते रहे ना, ज़रा प्लीज़ आप रोड पे गाड़ी ना लाइएगा, मैं ज़रा बाहर निकलने लगी हूँ, आप खड़े सुबह से रात तक बैठे रहेंगे, आप देखेंगे कि लोग आपको कभी भी वक्त नहीं देंगे। ये तो हर बंदे की अपनी काम है, और जब तक हम दूसरों को नहीं बचाएंगे खुद नहीं बचेंगे। एक बंदा समंदर के आगे बंद नहीं बांध सकता ना, इसी तरह एक अकेला इंसान किसी बुराई वाले माहौल में खुद को और अपनी नस्लों को बचा नहीं सकता जब तक इसके लिए इज्तमाही कोशिशें ना हो। जैसे एक बंदा पहाड़ पे चढ़ता है ना तो थोड़ी सी दूर चढ़ के थक जाएगा, दो चढ़ रहे होंगे ना तो एक दूसरे से हिम्मत लेंगे, तीन हो जाएंगे, चार होंगे, अब देखेंगे शौक शौक में सैर कर लेंगे। मैंने अक्सर ये जुमला सुना है कि वॉक अकेले नहीं होती, क्योंकि करें क्या, और थक रहे हैं थोड़ी देर में, और कोई मंजिल नहीं, कुछ नहीं, चलो अब चलते हैं, दो चार होंगे ना पता ही नहीं चलता, और इंसान ऐसे भागता है। नेकी के काम भी ऐसे ही होते हैं। याद रखें जब तक हमारे अपने अंदर से तड़प नहीं उठेगी ना, हम मुर्दा ही रहेंगे। हाँक हाँक के चलने चलाने वाले ज़्यादा देर नहीं चल पाते, अंदर से एनर्जी उठती है ना तो बंदा चलता है, कोशिश करता है, हिम्मत करता है, आइडियाज़ लगाता है, इरादे देखता है। हर बंदे को अल्लाह ने ये समझ दी है कि मैं किस जगह क्या काम कर सकता हूँ और क्या करूँगा, और अगर दिल में शौक है कर कुछ नहीं रहे तो समझ लें कि इन नज़ाल कम नज़म उमूर, अभी कमी अज़्म में है। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। हम खड़े हों फिर ज़ीरो वो लगाता रहेगा, 10, एक और ज़ीरो लगाएगा 100, एक और लगाएगा 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, अल्लाह ज़ीरो लगाता रहेगा। आप खड़े रहे और आप गिरे, सब ज़ीरो भी साथ ही गिर गएंगे। अल्लाह की मदद आती अज़्म और इरादों के साथ है। अल्लाह के नबी की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, आपने फरमाया कि मोमिन दो तरह के होते हैं, एक ढीले ढाले लुढ़कते लुढ़कते और एक मजबूत। का खैर दोनों में है, लेकिन अल्लाह को मजबूत मोमिन ढीले ढीले मोमिन से ज़्यादा प्यारा लगता है। जो रिवायतों में आता है कि उमर आए तो इस्लाम आज़ाद हुआ, इस्लाम खुला आया, पहली दफ़ा लोगों ने नमाज पढ़ी हरम में। क्यों? कि उमर के अंदर अज़्म था, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी, अबू बकर में और तरह की खूबियाँ थी। तो हर जगह यही चीज़ होगी कि किस तरीके से ये सोसाइटीज़ दुरुस्त होंगी जब बचपन से ये बातें सिखाई जाए, इज्तमाईयत की तालीम दी जा रही है बच्चों को कि देखो खुद भी नमाज़ पढ़ो, अपने बच्चों को भी नमाज़ के लिए बताओ, ये करो वो करो। हमारे यहाँ अमूमन के अमर बिल मारूफ ये उलमा का काम है, स्कॉलर्स का काम है, और औरतें तो कर नहीं सकती, और लड़कियां तो तौबा करें, ये तो दीन को खेल बना रहे हैं, बुराइयां करने ले सब फैलाएं, और सफाई करने ले चंद छः लोग, कितने कालिम होते हैं दुनिया में। देखिए आप इमेजिन कर ले, आज आप देखिए कि मैट्रिक करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन PhD करने ले कितने हैं दुनियावी चीज़ों में। इसी तरह क्या दीन के स्कॉलर्स इतने हैं या इतने सरकमस्टांसिस हैं कि वो हर गली की नुक्कड़ में भी पहुंच जाए? लेकिन इस पे बहुत आवाज़ें उठती है। फिर आप देखिए कि यहाँ छोटी सी प्रैक्टिकल बातें कर दूँ कि बच्चों को आप कैसे समझाएं ये बुराई की बातें, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाएं। बस माँ बाप छोटी छोटी बातों पे बच्चों को फिर इस तरह रोक टोक करते हैं। मसलन जैसे एक थी, वो सुनाने लगी कि हमारे घर में कोई औरतें आई तो वो पर्दे से नहीं थी, घर का माहौल पर्दे वाला था, तो बच्चों ने उनको रोक लिया, आपने बुरका क्यों नहीं पहना, या कोई सुना रहा था कि TV है ये तो शैतान है मैं इसको मारूंगा। ये तरीका ना सिखाएं बच्चों को। जो चीज़ बड़ों को अच्छी नहीं लगती ना, वो बच्चे के मुंह से तो और बुरी लगती है। कम से कम मेरा बच्चा हो तो मैं तो उसको कभी इस तरह ना सिखाऊं। आपका सबसे बेहतरीन तरीका जो आपको अपने बच्चों को दीन सिखाने का ना, आप उसको उसकी इस फीलिंग के साथ रेस करें कि यू आर अ मुस्लिम चाइल्ड, मुस्लिम शुड बी लाइक दिस, मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं। आज सी नरमी, प्यार, मोहब्बत इस तरीके से अमर बिल मारूफ है। हाँ, किसी की चीज़ नहीं बेटा चोरी करनी, ये बुराई बात है, किसी की चीज़ों को स्कूल से लेके नहीं आ जाना, कोई बुरी चीज़ देखी है तो उसको अच्छे तरीके से मतलब करना है। आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ है, बस छोटे छोटे बच्चों को बड़ा पक्का कर देते हैं, पक्के पीढ़े जो बच्चे होते हैं वो भी नहीं अच्छे लगते, बच्चा बच्चा ही अच्छा लगता है। उसको प्यार प्यार से समझाएं, क्योंकि उसका फिर तरीका भी हमने सिखाना है।